अध्याय 10 प्रेमी भक्त रसखान खंड 1। रसखान शब्द किसी व्यक्ति का मूल नाम न होकर उसका उपनाम सा लगता है, किंतु यदि सदा के लिए प्रयुक्त तो होता आया है। कहा जाता है कि रसखान जाति के मुसलमान थे और किसी कारणवश हिंदू धर्म के अनुयायी हो गए थे। कुछ लोग इन्हें सैयद इब्राहिम पिहानी वाले कहा करते हैं और यह नाम इन्हें शिव सिंह सरोज में भी दिया गया मिलता है, परंतु इस विषय में अभी तक पूरी खोज नहीं हो पाई है, जिस कारण कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता। अपने विषय में इन्होंने एक स्थल पर बतलाया है, देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान छिनही बदसावंश की ठसक छोरी रसखान प्रेम निकेतन श्री वनही आई गोवर्धन धाम लहियो शरण चित चाही के जुगल स्वरूप ललाम्ब तोरी मानिनी ते हियो होरी मोहिनी मान प्रेम देव के छावे ही लखी भय मियां रसखान। इससे प्रकट होता है कि ये कदाचित किसी शाही घराने के भी रहे होंगे। दिल्ली नगर में अधिक उत्पात देखकर इन्हें विरक्ति जगी होगी और ये श्री गोवर्धन धाम में जाकर श्री कृष्ण भक्ति में लीन हो गए होंगे। इस परिचय से इतना और भी पता चलता है कि ये पहले किसी सुंदरी पर आसक्त भी रहे होंगे, किंतु श्री कृष्ण के सौंदर्य से प्रभावित होकर अंत में मियां अर्थात इस्लाम धर्मानुयायी से रसखान नामधारी हिंदू बन गए होंगे। परंतु इससे भी रसखान के वास्तविक नाम के संबंध में कोई भी प्रकाश नहीं पड़ता। उपर्युक्त अवतरण के प्रथम दोहे से एक बात यह भी सूचित होती है कि इनका संबंध किसी शाही घराने से था, किंतु साहिबी हित अथवा शासन के लिए दिल्ली नगर में राज विप्लव का दृश्य देखकर इन्हें अपनी ठसक अर्थात उच्च कुल की प्रतिष्ठा का मोह छोड़ देना पड़ा। इस प्रकार की विरक्ति इनमें छिनही अर्थात अकस्मात आ गई। परंतु इस प्रकार राज विप्लव कब हुआ, इस बात का निश्चित पता देना कुछ कठिन जान पड़ता है। रसखान की रचना प्रेम वाटिका के रचना काल के विदित होता है कि ये विक्रम की 17वीं शताब्दी में वर्तमान थे। यदि वह इनकी अंतिम कृति हो तो उसके पूर्वार्ध में भी ये रहे होंगे। विदुर सागर रस इंदु शुभ सरस बरस रसखान प्रेम वाटिका रचि रुचिर चीर हिय हरसी बखान। इससे स्पष्ट होता है कि इन्होंने उसे संवत 1671 में लिखा था, जिस कारण इनका संवत 1650 से पहले तक भी रहना संभव कहा जा सकता है। 252 वैष्णव की वार्ता से पता चलता है कि इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ग्रहण की थी, जिनका देहांत अनुमानतः संवत 1642 के लगभग हुआ था। इसलिए इस काल के पहले उपर्युक्त गदर के होने तथा उनके हिंदू धर्म ग्रहण करने की संभावना है, परंतु इसके आसपास किसी ऐसी घटना का होना इतिहास से सिद्ध नहीं होता जिसे गदर का नाम दिया जा सके और जिसके कारण दिल्ली नगर मसानवत हो गया हो। इतना पता चलता है कि अकबर बादशाह संवत 1597 से लेकर 1662 के सौतेले भाई मिर्जा मोहम्मद हकीम के उसके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र किए होंगे, जिस कारण उसे काबुल की ओर आक्रमण करके संवत 1628 में दबाना पड़ा था। हकीम ने जिस समय अकबर के विरुद्ध पंजाब पर चढ़ाई की थी, उस समय उसके षड्यंत्र में सम्मिलित समझे जाने वाले कुछ लोग दंडित भी किए गए थे। उस समय अकबर के दरबारियों का षड्यंत्र में नेतृत्व करने वाला शाह मंसूर था, जिसे बादशाह ने 1585 संवत 1642 में फांसी दिलवा दी। इस कारण संवत 1628 से संवत 1642 तक बड़े बड़े नगरों में अशांति और उपद्रव का हो जाना कोई असंभव सी बात न थी। यदि यह व्यापक रूप में हुआ हो और कुछ काल के लिए अराजकता सी फैल गई हो तो उसे गदर का नाम भी दे सकते हैं। उसका मूल कारण शासन की बागडोर हस्तगत करने की चेष्टा थी, इसलिए उसे साहबी के लिए होने वाली भी कहा जा सकता था। उस काल के पठान मुगलों की संतलत के विरुद्ध उपद्रव करने वालों में विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। इस कारण रसखान का भी आतंकित हो जाना कोई आश्चर्य की बात न थी। रसखान का जन्म संवत कुछ लोगों ने संवत 1615 माना है। यह इन सभी बातों पर विचार कर लेने पर ठीक भी कहा जा सकता है। उपर्युक्त अवतरण के अंतिम दोहे में आए हुए तोरी मानिन ते हियो फोरी मोहिनी मान जैसे शब्दों के आधार पर यह अनुमान किया जाता है कि इनकी कोई प्रेम पात्री भी रही होगी, जिसके मान में पहले पूर्ण प्रभावित हो जाते रहे होंगे। उक्त दोहे के आधार पर यह भी अनुमान किया गया है कि इन्होंने अपनी माननी धर्म पत्नी एवं मोहिनी उपपत्नी दोनों का परित्याग कर दिया होगा। इनकी पत्नी अथवा किसी संतान की कहीं पर चर्चा भी नहीं पाई जाती। प्रसिद्ध है कि ये किसी अविवाहिता स्त्री पर ही आसक्त हो गए थे और उसके हाथों की कठपुतली से हो रहे थे। एक दिन जब ये श्रीमद् भगवत का फारसी अनुवाद पढ़ रहे थे, इन्होंने गोपियों के विरह वर्णन का प्रसंग पढ़ा और अकस्मात उनके प्रियतम कृष्ण की ओर आकृष्ट हो गए। किंतु इससे गदर वाली बात की पुष्टि नहीं होती। इसी प्रकार उस जनश्रुति का भी कोई आधार नहीं जिसके अनुसार ये किसी कथा के अवसर पर कृष्ण के सुंदर चित्र को देखकर उस पर मुग्ध हो गए थे और कथावाचक के संकेत पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर वृंदावन चले गए थे। परंतु 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार ये वास्तव में पहले किसी बनिए के सुंदर लड़के पर आसक्त हो गए थे। लोगों ने निंदा करने पर भी उसके पीछे पीछे घूमते फिरते तथा उसकी जूठी थाली में खाया पिया करते थे। ये अंत में कृष्ण के शील सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वैष्णव भक्त बन गए थे। उस समय श्री कृष्ण की वैष्णव की प्रशंसा सुनकर किसी वैष्णव द्वारा इन्हें श्रीनाथ जी का चित्र दिखलाया जाना भी कहा जाता है। चाहे जो भी कारण रहा हो, इसमें संदेह नहीं कि रसखान को एक सच्चे प्रेमी का हृदय मिला था। उसकी उमंग में इन्होंने अपने मूल धर्म उच्च कुल व कीर्ति की भी उपेक्षा कर दी थी और कृष्णा भक्त हो गए थे। इसीलिए श्री राधाचरण गोस्वामी ने इनकी प्रशंसा करते हुए अपनी नव भक्त माल में इस प्रकार लिखा है। दिल्ली नगर निवास बदसावस विभाकर चित्र देख मन हरो भरोपन प्रेम सुधाकर श्री गोवर्धन आई जबई दर्शन नहीं पाए टेढ़े मेढ़े बचन रचन निर्भय द्वय गाए तब आप आए सुम नाथ कर श्रुषा मोहमान की कवि कौन मिताई कही सके श्री नाथ साथ रसखान की। जान पड़ता है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण करके ये फिर पूर्ण भक्त बन गए और अपना जीवन उसी प्रकार बिताने लगे। इनकी एक रचना से पता चलता है कि इन्होंने देश विदेश के नरेशों के यहाँ भी अपने भाग्य की परीक्षा की थी। अंत में कृष्ण के बड़ो रिजवार होने पर विश्वास करके उन्हीं के गुणगान में लग गए थे, किंतु इनके लिए कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला। वेणी माधवदास के समझे जाने वाले मुगल गुसाई चरित्र के एक स्थल पर लिखा मिलता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी नवनिर्मित रचना रामचरितमानस को सर्वप्रथम मिथिला के रूपारूण स्वामी को सुनाया था। उसके अनंतर संडीला निवासी स्वामी नंदलाल का शिष्य दलाल दास उनके यहाँ से उसकी प्रतिलिपि करके अपने गुरु के पास ले गया था। उसने फिर उसे जमुना तट पे त्रय वत्सर लो रस सा नहीं जाय सुनावत भो। इससे पता चलता है कि उन्होंने उससे सम्मत 1633 के आसपास सुना होगा। इन्हें वह ग्रंथ ऐसा रुचिकर जान पड़ा होगा कि ये उसे संभवतः सम्मत 1636 व 1637 तक सुनते रहे होंगे, परंतु इनका जन्म सम्मत 1615 ही मान लिया जाए तो इसकी अवस्था उस समय 18-20 वर्ष की ठहरती है जब ये सौंदर्योपासक मात्र रहे होंगे। रामचरितमानस के रामचंद्र को अत्यंत सुंदर बतलाया गया है, जिन्हें देखते ही सुर नर असुर एवं समुद्र के जलचर तक मुग्ध हो जाते हैं। किंतु आश्चर्य की बात है कि निरंतर 3 वर्षों तक उनका वर्णन सुनने वाले रसखान ने उनके विषय में प्रायः कुछ भी नहीं लिखा है। रसखान द्वारा रचे गए किसी प्रबंध काव्य का पता नहीं चलता और उनकी उपलब्ध रचनाएं फुटकर पदों के संग्रह के रूप में दिख पड़ती हैं। इनकी केवल एक ही पुस्तक ऐसी है जिसे पुस्तक के रूप में लिखी गई है कह सकते हैं, और यह भी केवल 52 दोहों की प्रेम वाटिका है। उसके अंत में इन्होंने स्वयं कह दिया है कि इसे इन्होंने रुचिर प्रेम वाटिका के रूप में सम्मत 1671 में निर्मित किया था। इसके अतिरिक्त इनकी रचनाओं में इनके समय भी बहुत प्रसिद्ध है और उनका एक संग्रह इनके कतिपय कवितों तथा कुछ दोहों एवं सोरठों के साथ सुजान रसखान के नाम से प्रकाशित हो चुका है, जिसमें विषय का कोई क्रम नहीं दिखाई देता। ऐसे संग्रहों के प्रकाशन का सर्वप्रथम प्रयास कदाचित गोस्वामी किशोरी लाल ने किया था और उसे किसी समय रसखान शतक के नाम से बाकीपुर के खड़ग बिलास प्रेस द्वारा प्रकाशित कराया था। उस संग्रह के पदों की संख्या में वृद्धि करके फिर उन्होंने सुजान रसखान के नाम से उसे भारत जीवन प्रेस काशी द्वारा सन 1919 में छपाया। उसमें कुल मिलाकर 133 छंदों को स्थान दिया। गोस्वामी ने इससे पहले सन 1907 ईस्वी में वही के हितचिंतक यंत्रालय से प्रेम वाटिका भी प्रकाशित करवाया, इसमें कुछ 53 दोहे थे। इसके अनंतर सम्मत 1986 इनके सुजान रसखान वाले संग्रह को कुछ और बड़ा करके उसे श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने रसखान पदावली के नाम से निकाला, किंतु उसी वर्ष अमीर सिंह के संपादन में काशी नगरी नागरी प्रचारणी सभा ने उसे ही प्रेम वाटिका के साथ रसखान और घनानंद के अंतर्गत संयुक्त रूप में भी प्रकाशित कर दिया। तब से फिर इनकी रचनाओं का एक संग्रह रसखान रत्नावली नाम से किंकर जी द्वारा संपादित होकर भारतवासी प्रेस दरागंज प्रयाग से प्रकाशित हुआ है, जिसमें पदों के कुछ रूप प्रवर्तित भी कर दिए गए हैं, फिर भी उक्त सभा के ही सम्मत 1991 तथा 1992 के वार्षिक विवरणों में पता चलता है कि प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करते समय उसके कार्यकर्ताओं को मथुरा जिले में रसखान के 600 सवैयों और कवितों का कोई संग्रह मिला है। प्रायः 400 सवैयों का ककर आदि क्रम से लिखा हुआ कदाचित एक दूसरा संग्रह भी उपलब्ध हुआ है, जो साहित्यिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण खोज वाली पुस्तकों की श्रेणी में रखने योग्य है। अतएव रसखान की सारी रचनाएं अभी तक प्रकाशित में नहीं आ पाई हैं और न उनका इसी कारण गंभीर अध्ययन और अनुशीलन किया जा सका है। खंड दो, रसखान की उपर्युक्त प्रकाशित रचनाओं को देखने से पता चलता है कि ये वास्तव में एक प्रेमी जीव थे जिन्हें विरक्ति ने लौकिक प्रेम सरिता से बाहर कर निकाला, श्री कृष्ण चंद्र के अलौकिक भक्ति सागर में मग्न कर दिया था। इनके प्रत्येक पद्य में प्रेममयी भक्ति का ही अनोखा रंग दिख पड़ता है। इन्हें अपने समसामयिक की अन्य कई भक्तों की भांति न तो अपने इष्ट देव की कोई लंबी चौड़ी प्रशंसा करनी है और न मुक्त व वैकुंठ की चाह में आत्मग्लानी में सने हुए विनय के पद ही निर्माण करने हैं। ये तो एक साधारण अहिर के घर खेल कूद करने तथा वृंदावन में गाय चराते समय विविध लीलाओं में सदा दत्त चित्त रहने वाले नव युवक श्री कृष्ण को अपनी निर्निमेश दृष्टि से केवल देखते रहना चाहते हैं। इनकी दृढ़ धारणा है कि यदि मैं उनके अनेक जन्मों तक भी देखता रहूं तो मेरे नेत्रों को तृप्ति नहीं मिल सकती। इन्हें अनेक विभव संपन्न द्वारिकाधीश अथवा महाभारत वाले राजनीतिज्ञ सूत्रधार एवं गीता के गायक से कोई काम नहीं, ये तो स्पष्टतः शब्दों में कह देते हैं। ग्वालन संग जैबो बन एबो सुगाइन संग हेरी तान गैबो हा हा नैन फरकत है। हाँ ये गज मोती माल वरौ गुंज मालन पै कुंज सुधी आय हाय प्राण धरकत है। गोबर को गोरो गारो सूतो मोही लगे प्यारो काहो भयो महल सोने को जटत मरकत है। मंतर मंदर ते ऊंचे यह मंदिर है द्वारिका के ब्रज के खिरक मेरे हृदय खरकत है। अर्थात द्वारिकापुरी में बने हुए मंदराचल से भी ऊंचे ऊंचे स्वर्ण मंदिर मेरे लिए ब्रज की झोपड़ियों के सामने कुछ भी नहीं है। न वहाँ की गजमुक्ता की बनी मालाएं यहाँ की कुंज मालाओं के सामने कुछ अधिक महत्व रखती हैं। मैं उन्हें इनके ऊपर न्यौछावर करने तक पर तैयार हो सकता हूँ। कारण यह कि ब्रज के ग्वालों के साथ सदा बन को जाना, वहाँ से फिर लौट कर गौ के साथ आना और तान अलाप करना मेरे लिए आनंद एवं प्रेमोल्लास के विषय हैं। मुझे तो उसी कारण ब्रज की गोबर वाली ढेरों तक परम प्रिय जान पड़ती है। ब्रज की एक एक वस्तु के साथ मेरी इतनी आत्मीयता हो गई है कि उसका अनुभव होते ही मेरे नेत्र फड़क उठते हैं और मेरा हृदय भी धड़कने लगता है। रसखान की इसी भावना को अपने एक समय द्वारा इस प्रकार भी व्यक्त किया है। वालकुटी अरुकामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो अठहू सिद्धि नौ निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखानी कबो इन अखिन सौ ब्रज कौ वन बाग तटाग निहारो कोटिन हूँ कल धौत धाम के करील के कूजन ऊपर वारो। अर्थात अपने प्रियतम कृष्ण की लकुटी और कामरी के उपलक्ष्य में मैं सारे तैरों त्रिलोक के का राज्य तक न्यौछावर कर सकता हूँ। नंद बाबा की गाय चलाते समय आठों सिद्धियों तथा नौ निधियों का सुख तक भुला दे सकता हूँ। यदि किसी प्रकार ब्रज के उन करील वनों को इन अपने नेत्रों द्वारा कहीं देख पाऊँ तो इनके ऊपर करोड़ों स्वर्ण मंदिर तक अर्पित कर देने से मुझे कुछ भी संकोच न होगा। वहाँ के अन्य बागों व तड़ागों को देखने की तो बात ही और है, ये तो यहाँ तक कह डालने में भी नहीं हिचकते। मानुस हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के मवारन जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। अर्थात यदि मर भी जाऊं और मेरा पुनर्जन्म होने वाला हो तो मेरी अभिलाषा है कि मैं मानव शरीर धारण करने की दशा में मैं ब्रजमंडल स्थित गोकुल गांव के ग्वालों के साथ ही निवास करूं। यदि मुझे पशु योनि भी मिले तो नंद बाबा की गांव गायों के साथ ही सदा चरता फिरूं। यदि पक्षी होना मेरे लिए निश्चित हो तो यमुना के नदी के किनारे खड़े कदम्ब वृक्षों की डाल पर ही अपना घोंसला बनाऊं। यदि पत्थर हो जाऊं तो भी उस पर्वत गोवर्धन गिरी का ही एक शिखाखंड बन जाऊं, जिसे मेरे प्रियतम श्री कृष्ण ने कभी इंद्र की मूसलाधार वर्षा से वज्र के ब्रज को बचाने के लिए उसे अपने हाथ में व उंगली पर छाती की भांति धारण किए थे। भक्तरस खान अपने इष्ट देव अथवा उक्त प्रियतम श्री कृष्ण के विषय में मीमांसा करते हुए इस परिणाम तक पहुँचते हैं। ब्रह्म में ढूंढियो पुराणन गानन वेद ऋचा सुनियो चौगुने चायन, देखियो सुनियो कबहु न कितु वह कैसे स्वरूप औ कैसे सुभायन, तेरत हेरत हारी परियो रसखानी बतायो न लोग लुगायन, देखो दुरी वह कुंज कुटीर में बैठी पलोटत राधिका पायन। अर्थात वैदिक ऋचाओं के आधार पर ब्रह्म का महत्व सुनकर मैं उसे पौराणिक गाथाओं तथा संगीत के सहारे कई और ढूंढता फिरा, किंतु कहीं पर भी मुझे उसके स्वरूप अथवा स्वभाव के विषय में कोई तथ्य अनुभव में नहीं आया। मैं उसे खोजता और चिल्लाता हुआ दौड़ धूप कर हार मानकर बैठ गया। किसी भी नर नारी ने मुझे उसका ठीक ठीक परिचय नहीं दिया। अंत में अनेक प्रकार की उधेड़ बुन के पश्चात मैं अपने आप अनुभव द्वारा इसी परिणाम पर पहुंचा कि जिसे ब्रह्म की उपाधि धारण करने वाला कहा जाता है वह वस्तुतः वही है जिसका ध्यान में ब्रज के लता मंडपों में छिपकर बैठे हुए तथा अपनी प्रीततमा राधिका के चरणों को दबाते हुए एक सच्चे प्रेमी के रूप में सदा किया करता हूँ। इनकी व्याख्या के अनुसार इसी कारण ब्रह्म का स्वरूप आनंद घन एवं प्रेममय ही बताया जा सकता है। रसखान शुद्ध प्रेमा भक्ति की उपासना को ही सर्वोच्च स्थान देते हैं और प्रेम के विषय में इन्होंने प्रेम वाटिका की रचना की थी। उस छोटी सी पुस्तक को देखने से भी स्पष्ट हो जाता है कि इन्होंने इस विषय पर पूरा अध्ययन एवं चिंतन भी किया होगा। इनके पूर्ववर्ती तथा समकालीन अन्य भक्त कवियों ने भी इसे लेकर अपनी अपनी रचनाएं की हैं, किंतु रस खान का प्रेम निरूपण अपने ढंग का निराला है। उनमें इनके व्यक्तिगत अनुभव एवं स्वाध्याय की पूरी छाया लगी हुई है। रस खान ने प्रेमी की महिमा बतलाई है, उसके लक्षण और स्वरूप पर लिखा है और उसके मुख्य मुख्य भेद भी कहे हैं। शुद्ध प्रेम का स्वरूप चित्र करते समय इन्होंने उसके अन्य प्रकार के भाव के साथ तुलना करके भी दिखलाया है। इसकी विशुद्ध भारतीय पद्धति का विशद विवेचन करते समय भी इसके व्यापक क्षेत्र को सदा अपने ध्यान में रखा है। प्रेम की महिमा गाते हुए ये बतलाते हैं कि प्रेम के बिना ज्ञान का गर्व करना व्यर्थ है। प्रेम ही श्रुति स्मृति पुराण आदि सभी का सार है। यहाँ तक कि प्रेम के ही आधार पर विषयानंद एवं ब्रह्मानंद दोनों आश्रित है। प्रेम के बिना ज्ञान कर्म उपासना आदि की साधनाएं सिवाय अहम मान्यता के और कुछ भी नहीं। प्रेम वह वस्तु है जिसका न जानना कुछ भी न जानने के बराबर है, जिसके जान लेने पर कोई भी ज्ञान शेष नहीं रह जाता। प्रेम हरि अथवा ईश्वर का ही रूप है और इन दोनों में वही संबंध है जो धूप एवं सूर्य में पाया जाता है। प्रेम को पा लेने पर वैकुंठ क्या, स्वयं हरि तक की चाह नहीं रह जाती, क्योंकि सबको अपने अधीन रखने वाले हरि स्वयं प्रेम के अधीन रहते हैं। प्रेम ही सब धर्मों से बढ़कर और वही वास्तविक मुक्ति भी है। परंतु यह सब होते हुए भी प्रेम को विरले मनुष्य जान पड़ते हैं। जगदीश एवं दोनों प्रेम समझ के परे और अकथनीय है। बहुत लोगों ने इसे रूपकों के द्वारा समझाने की चेष्टा की है। कहा जाता है कि प्रेम समुद्र की भांति अगम अनूप और अपरिमित है, अथवा प्रेम वह वारुणी है जिसे पीकर वरुण देव जल के स्वामी हो गए, जिसके कारण विस्पान करने पर भी शिव आज तक भी पूजित होते हैं। इसी प्रकार यह भी कहा जाता है कि प्रेम वह दर्पण है जिसमें स्वयं अपना रूप भी विचित्र और अपरिचित सा प्रतीत होता है। वह फांसी तलवार नेजा भाला एवं तीर है जिसकी मार की मिठास रोम रोम में भर जाती है, जिसके कारण मरता हुआ भी प्राणी पुनर्जीवित हो उठता है, झुकता हुआ भी संभल जाता है तथा नितांत नष्ट भ्रष्ट हो चुकने वाला भी पुनः उठकर खड़ा हो जाता है। यह वह विचित्र खेल है जिसमें दो दिलों का मेल हो जाता है और प्राणों तक की बाजी लगती है। यह एक विचित्र धूर्त कर्म समझा जाता है, किंतु इन बातों से विषय का स्पष्टीकरण नहीं होता। अतएव रस खान ने प्रेम तत्व को भली भांति हृदय गम कराने के लिए उसे कुछ विस्तार देकर स्पष्ट करने की चेष्टा की है। ये कहते हैं कि जिस वस्तु से प्रेम की उत्पत्ति होती है वह प्रेम का बीज रूप है। जिसमें वह उत्पन्न होता है वह उसका क्षेत्र रूप है, जिसकी सहायता से वह अंकुरित विकसित पुष्पित एवं फलायुक्त हुआ करता है। वह सब प्रेम ही प्रेम है, वही बीज है, वही अंकुर है, वही जल का सिंचाव है, वही उसका आल भाल भी है, तथा उसी सुख के सर्वस्व को हम अपनी ढाल पात फूल और फल भी मानते हैं। वह जो है, जिससे है, जिसमें है और जिसके लिए है, वह सभी कुछ प्रेम ही प्रेम है। कार्य कारण रूप कर्ता कर्म कारण और क्रिया भी स्वयं प्रेम ही है। प्रेम के संसार में उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु पृथक रूप में नहीं है। प्रत्यक्षता प्रेम श्रवण कीर्तन तथा दर्शन से उत्पन्न होता है। वह शुद्ध एवं अशुद्ध के भेद से दो प्रकार का समझा जा सकता है। जो स्वार्थ मूलक होता है उसे अशुद्ध कहा जा सकता है, और जो रसमय स्वाभाविक निस्वार्थ अचल महान और सदा एक रस हुआ करता है वही शुद्ध प्रेम है। रसखान इस शुद्ध प्रेम की दंपत्ति सुख विषय रस पूजा निष्ठा एवं ध्यान इन सभी से परे की वस्तु मानते हैं। ये उसकी परिभाषा देते हुए बतलाते हैं, बिनु गुनु जोबन रूप धन बिनु स्वार्थ हित जानी शुद्ध कामना ते रहित प्रेम सकल रस खानी तथा इत अंगी बिनु कारण नहीं इक रस सदा समान गणे प्रिय ही सर्वस्व जो सोई प्रेम प्रमाण। अर्थात गुण यौवन सौंदर्य धन अथवा किसी प्रकार की भी स्वार्थमयी कामना की जो अपेक्षा नहीं करता हो, जो एकांगी निष्कारण एक रस व एक रूप प्रेमी का प्रेमी हो, वो तथा जो एकमात्र प्रियतम को ही अपना सर्वस्व मानता हो, वही वास्तविक प्रेम का पुजारी है। ऐसी दशा में मित्र कलत्र भ्राता या पुत्र के प्रति उत्पन्न हुआ तथा स्वाभाविक समझा जाने वाला स्नेह भी पूर्णतः विशुद्ध नहीं कहा जा सकता। संसार में सबसे अधिक ममता अपने शरीर के प्रति हुआ करती है, किंतु प्रेम उस शरीर से भी अधिक प्यारा है। इसका कारण यह है कि सच्चे प्रेम के प्रेमी एवं प्रेम पात्र के केवल दो ही मन एक नहीं हो जाते, अपितु उनके दो शरीरों में भी अभिन्नता का अभाव आ जाता है और वह प्रेम के रंग में रंग जाता है। रसखान ने प्रेम के मार्ग को इसी कारण बड़े विचित्र ढंग से ठहराया है। कमल तंतु सो छीन अरु कठिन खडक की धार अति सुधो टेढ़ो बहुरी प्रेम पंथ अनिवार अति सूक्ष्म कोमल अति ही अति पतरो अति दूर प्रेम कठिन सबते सदा नित इक रस भरपूर। अर्थात वह कमल सूत्र के समान क्षीण है किंतु तलवार के धार के समान कठिन भी है। वह अत्यंत सीधा किंतु साथ ही विकट भी है। प्रेम की कठिनाई इसी कारण है कि वह सदा एक रस एवं एक भरपूर होता हुआ भी अत्यंत सूक्ष्म और कोमल है, अत्यंत क्षीण अथवा संकीर्ण होता हुआ भी बहुत लंबा है। रसखान से पीछे आने वाले प्रेमी कवि घनानंद ने स्नेह को मार्ग अति सुधो कहा है, और उसी प्रकार बोधा ने प्रेम को पंथ और मृणाल के तारहुते अति खीन बतलाकर उसे महाकराल ठहराया है, जिनमें ऐसी विचित्रता नहीं है। प्रेम की अकथ कहानी को इसी कारण केवल कुछ लोगों ने ही आज तक जान पाए हैं। इसे मानो लैला खूब जानती थी अथवा ब्रज की गोपियां इनमें अनन्य हो गई थी, और इसके रस की माधुरी को कुछ उद्धव ने भी जाना था। अब दूसरा कौन है जो इसकी मिठरत को पा सके। खंड 3। उपर्युक्त आदर्श प्रेमियों में से गोपियों के प्रेम का वर्णन रसखान ने अपने कवितों और समयों में सुंदर ढंग से किया है। कृष्ण किसी दिन उसमें से किसी एक का नाम लेकर अपनी वंशी बजा देते हैं, कभी उसकी गली से चल निकलते हैं, कभी अवसर पाकर उनसे आंखें चार कर लेते हैं, कभी गौरस बेचते समय उनसे भेंट हो जाने पर उनसे थोड़ी सी बतरस कर बैठते हैं, उन्हें देखकर तनिक मुस्कुरा भर देते हैं, और इतने में ही वे बावली सी होकर उनके पीछे पड़ जाती हैं। उनका प्रेम दिन दूना रात चौगुना हुआ करता है, नित्य बढ़ता चला जाता है। उदाहरण के लिए रसखान ने किसी ऐसी ही गोपी द्वारा कहलाया है, दूध दुहियो सीरो परियो तातो न जमाथो करियो जामन दही सो धरियो धोर वही खटाई गो आन हाथ आन पाई सभी के तभी ते जब ही से रसखानी तानन सुनाई गो ज्यो ही नर त्यो ही नारी तैसी ये तरुण बारी कहिए कहारी सब ब्रज बिललाई को जानिए न आली यह छोहरा जसो मती को बांसुरी बजाई गो की विष बरसाई गो। अर्थात दुहा हुआ दूध ठंडा व बासी सा हो चला, ओटे हुए में जामन डालना रह गया। जामन जिसमें पड़ चुका था वह यो ही रखा रखा खट्टा होने लगा। ये सभी काम तभी से अधूरे रह गए जब से उसने अपनी बंसी की तान छेड़ दी। उसे सुनने वाली प्रत्येक गोपी के हाथ पैर मानो और के और हो गए। स्त्रियों की ही कौन कहे, पुरुष तक भी अर्थात सारे ब्रजवासी विलाले बन गए। इसका कारण केवल यही तो हो सकता है कि यशोदा के उस लड़के ने वंशी वादन के बहाने सारे ब्रज मंडल में विष फैला दिया है। इसी प्रकार इस वंशी वादन के प्रभाव द्वारा उत्पन्न हुए प्रेम भाव का वर्णन करती हुई कोई गोपी अपने विषय में कहती है, मेरी सुभाव चितेबे को मायरी लाल निहारी के बंसी बजाई, वादिन ते मोहि लागी ठगोरी सी, लोग कहे कोई बावरी आई, यो रस खानी धरियो सिगरो ब्रज, जानत वे की मेरो जियराई, जो को चाहे भलो अपनो तौ स्नेह न काहू सो कीजियो माई। अर्थात मेरा स्वभाव इधर उधर देखने का ठहरा ही, उसने मुझे ही लक्ष्य करके अपनी बंसी बजा दी। बस उसी दिन से मुझे कुछ जादू टोना सा लग गया तथा मैं सबके बीच पागल कहलाकर प्रसिद्ध हो चली। इस ब्रजमंडल में से सभी प्रकार के नर नारी निवास करते हैं, किंतु मेरे और उसके बीच के संबंध का रहस्य किसी को भी ज्ञात नहीं। या तो इसे वही जानता है या मेरा हृदय इससे परिचित है। मेरा अनुभव तो यह हो रहा है कि यदि कोई अपना भला चाहता हो तो उसे किसी के साथ प्रेम नहीं करना चाहिए। ऐसी गोपियां ब्रजमंडल में अनेक थी जो उक्त प्रकार से पूर्णतः कृष्ण के वश में हो गई थी और वे उनके लिए सब कुछ करने को उद्यत रहती थी। वे कहती थी, हम लोगों को ऐसी दशा में सभी कुछ सहन करना चाहिए। जब उनसे प्रेम कर लिया तब किसी नियम का पालन करना या किसी मर्यादा की रक्षा करना हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रखता। अब तो वे जैसा नाच नाचने को हमें कहेंगे वैसा हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और उन्हें देख पाने के यत्न करने चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगी, चेरिये सो जू गोपाल रचियो तौ चलो री सबई मिली चेरी कहावे। अर्थात यदि वे इसी बात में प्रसन्न है कि हम लोग चेरी बन जाएं, जैसा कि उनके चेरी कुब्जा के प्रति अनुरक्ति प्रदर्शन से सूचित होता है, तो चलो हम सभी आज से चेरी कहलाने का ही नियम अनुसरण करें, जिससे वे किसी प्रकार हमारी ओर आकृष्ट हो सकें और हम अपने को कृत्य कृत्य मान सकें। गोपियां कृष्ण के प्रेम में पूर्ण तन्मय रहा करती हैं और वे सदा उनकी धुन में लगी हुई होने के कारण अन्य बातों की ओर कभी ध्यान तक नहीं देती। कृष्ण के प्रति उनकी तन्मयता उस समय अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच जाती है जब वे कीट भृंग न्याय के अनुसार अपने को कृष्णवत बनाने की चेष्टा करने लगती है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो गुंज की माल गरे पही रोग, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी वन गोधन ग्वारीन संग फिरोगी, भावत मोही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की अधरन धरी अराधन धरोगी। अर्थात मेरा प्रियतम मुझे अब ऐसा भा गया है कि यदि तू कहे तो मैं उसके उपलक्ष में सारा स्वांग रस डालने की चेष्टा करूंगी। मैं अपने सिर तक मोर पंखा रखूंगी, गले में कुंजमाल पहनूंगी, पीताम्बर ओढ़कर तथा हाथ में लकुटियां लेकर वन में गो और ग्वालों के संग घूमती फिरूंगी, और जिस मुरली को मेरा प्रियतम बजाता है उसे मैं भी उसी प्रकार बजाऊंगी। वास्तव में कृष्ण का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक है और उसे देखकर गोपियां अपने को किसी प्रकार संभाल नहीं पाती। उनकी इस व्यवस्था का दिग्दर्शन कराते हुए रसखान किसी एक गोपी के विषय में कहते हैं, जा दिन ते निरखियो नंद नंदन कानी तजी कुल बंधन छूटयो, चारु विलोकनी की निसी मार संभार गई मन मार ने लूटयो, सागर को सरिता जिमी धावती रोकी रहे कुल को पुल टूट टूट हयो, मत भयो मन संग फिरे रसखानी स्वरूप सुधारस घुटयो। अर्थात सर्व प्रथम दिन के ही दर्शन से प्रभावित होकर उसने अपने कुल की लाज और मर्यादा का त्याग कर दिया। उनकी सुंदर चितवन के फेर में पड़कर उसका मन लुट गया और वह उनके पीछे वैसे ही वेग के साथ दौड़ पड़ी जैसे कोई नदी समुद्र की ओर प्रवाहित हो चली हो और सामने पड़ने वाले पुल को तोड़कर आगे बढ़ रही हो। यहाँ उसने अपने कुल के बंधनों को उसी प्रकार तोड़ दिया है। उसके सौंदर्य की सुधा का रसपान करके उसका मन मतवाला बना अब उनके पीछे पीछे डोल रहा है। कृष्ण का स्वरूप गोपियों के मनोमंदिर में इस प्रकार जमकर बैठ जाता है कि उन्हें अपने आसपास तक का ज्ञान नहीं रह जाता। एक गोपी को कृष्ण का साक्षात्कार होता है और वह उनके स्वरूप सौंदर्य को देखते ही अपनी आंखें मूंद कर पागल सी मुस्कुराने लगती है। उसे से उसकी सखी बार बार कहती है कि अरे ये तेरे सामने खड़े हैं, इन्हें देखकर ये कैसे लुभावने लगते हैं, अपना घूंघट हटा, इन्हें भरपूर देख ले। किंतु उसे इसकी सुध नहीं, वह उसी कृष्ण को अपने हृदय में बिठाकर संतुष्ट है। उसे घूंघट खोलने की आवश्यकता नहीं है, ना वह यही समझ पाती है कि जिसके प्रतिरूप या प्रतीक को वह अपने मन के भीतर स्थान दिया है वह बाहर स्वयं उपस्थित है। रसखान ने जो इस दृश्य का सुंदर चित्र खींचा है वह इस प्रकार है। सोहत है चंदवा सिर मौर के, जैसी ये सुंदर पाग कसी है, तैसी ये गोरज भाल विराजती, जैसी ही वनमाल लसी है। रसखानी बिलोकत बौरी भई, दृग मुदी के ग्वाली पुकारी हसी, खोलिरी घूंघट खोलो, कहां वह मूर्ति नयनन मांझ बसी है। अर्थात श्याम सुंदर के सिर पर लगी हुई मोर चंद्रिका को कलंगी उनकी सुंदर पाग ललाट पर दिया हुआ गोरजी चंदन तथा उनके वक्ष स्थल पर शोभायमान वनमाला सभी एक से एक मनोमोहक है और उनका जीता जागता चित्र उस गोपी की आंखों में स्थायी रूप से अंकित हो गया है। अब उसे अपनी आंखें खोलकर फिर दोबारा उन्हें प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता ही क्या रह गई है। रसखान के इस समय को पढ़ते ही हमारे सामने सहसा उस क्षुतिक्षण की भाव मुद्रा आ जाती है जिसका वर्णन तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस के अरण्य कांड में किया है। गोस्वामी जी ने सुतीक्षण को निर्भर प्रेम मगन कहा है और बतलाया है कि पहले वे प्रेम विफल होकर अपने इष्ट देव के प्रति आगमन के उपलक्ष्य में आनंद विभोर से हो गए थे। उन्हें वृक्षों की ओट से देख देख कर नित्य करने लग जाते थे, किंतु जब उन्होंने श्री रामचंद्र को अपने हृदय में प्रतिष्ठित पाया तो वे पुलकित होकर मार्ग में ही बैठ गए और ध्यानस्थ हो गए। उन्हें फिर सामने अपने सामने प्रत्यक्ष रूप में ही उपस्थित राम का भान एकदम से नहीं रहा और वे स्वयं उन्हीं के द्वारा जगाए जाने पर भी सचेत नहीं हो सके। रसखान की गोपी को श्री कृष्ण की मुस्कान, उसके वंशी वादन और उसकी मुखाकृति के सौंदर्य का प्रभाव भलीभांति विदित है। उनमें से एक स्पष्ट शब्दों में कहती है, कानन दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मोहिनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही को कितनो समुझे है, मायरी वा मुख की मुस्कानी, समहारी न जेहे न जेहे न जेहे। अर्थात जब श्री कृष्ण मंद ध्वनि में अपनी वंशी बजाने लगते हैं अथवा ऊंचे स्थान पर चढ़कर गौ को टेरने लगेंगे तो अपने कानों में उंगली डालकर उसे न सुनने का लाख यत्न करने पर भी सफलता नहीं मिलेगी। मैं सारे ब्रजवासियों को ललकार कर कहती हूँ कि कल उस समय किसी को कोई चाहे किसी प्रकार भी समझाएगा, उस पर उनकी मुस्कान का प्रभाव पड़कर ही रहेगा, इसमें संदेह नहीं। गोपियाँ इस बात में दृढ़ निश्चय हैं। माई की अटक जोलो, सासू की अटक तौलो, देखी ना लटक मेरे दुल्हा कन्हैया की। अर्थात माँ की ओर से बाधा तभी पड़ सकती है और अपनी सास भी तभी तक रुकावट डाल सकती है जब तक किसी ने उस प्रियतम कृष्ण के त्रिभंगी स्वरूप को प्रत्यक्ष नहीं कर लिया है। उसे देख लेने पर ऐसे प्रश्नों का उठना असंभव सा है। उपर्युक्त वंशी वादन, प्रत्यक्ष दर्शन तथा मनोरम लावण्य के आस्वादन द्वारा गोपियों की दशा विचित्र हो जाती है। अपने प्रियतम के प्रति उनका प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि वे इतनी तन्मय रहती हैं कि उनकी आंखें तक इसका पता देने लगती हैं। वे रसखान के ही शब्दों में, उन्हीं के स्नेहन सानी रहे, उन्हीं के जू नेह दीवानी रहे, उन्हीं के सुनई न औ बैन त्यो सेन सो, चैन अनेकन थानी रहे, उन्हीं संग डोलनी में रसखानी, सने सुख सिंधु अघानी रहे, उन्हीं बिन ज्यो जलहीन हवे मीन सी, आंखें मेरी असुवानी रहे। अर्थात मेरी आंखों की दशा विचित्र हो गई है, ये उस प्रीतम के ही स्नेह में सदा सनी रहा करती है, उसी के प्रेम में पगली बनी रहती है, उसी की बातों के संकेत मात्र के भी सहारे अपने अनेक प्रकार का आनंद लुटा करती है, उसी के साथ रहने में अपने को सुखमय समझा करती है। यदि उससे किसी प्रकार वियोग हो जाता है तो जल से बिछुड़ी मछली की भांति बेचैन होकर सर्वदा आंसू बहाया करती है। गोपियां श्री कृष्ण को वास्तव में अपना सर्वस्व और जीवनाधार मान बैठी हैं। उस प्रियतम के अतिरिक्त उनका अन्य कोई भी आश्रय नहीं है। उनका कहना है, प्राण वही जू रहे जी रीझी वापर, रूप वही जी ही वाही रिझायो, शीस वही जिन वे पर से, पद अंक वही जिन वा परसायो, दूध वही जू दुधाय री वाही, दधीसु सही जू वही ढरकायो, और कहा लव कही रसखानी री भाई वही जू वही मन भायो। अर्थात जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी का मूल्य व महत्व उस एक प्रियतम के संबंध पर ही निर्भर है, अन्यथा वह किसी भी काम की नहीं। वे प्राण ही सच्चे हैं जो उस पर रिझाना जानते हो। रूप वही वास्तविक है जिसने उसकी उसे अपनी ओर आकृष्ट कर रखा हो। सिर का महत्व इसी में है कि वह उसके चरणों का स्पर्श कर ले। अंक वही है जिसने उसको कभी आलिंगन के समय संसर्ग में लाकर अपने का अपनाने का अवसर दिया हो। दूध का असली होना इसी बात पर निर्भर है कि उसे उसी ने दुहाया है। दधि भी उतनी ही दूर तक मधुर एवं विशुद्ध है जितना उसे निरेखेल में उधेड़ लिया। और तो क्या, हमारे आंतरिक भाव भी वही तक वास्तविक कहलाने योग्य हैं, जहाँ तक वे उस प्रीतम की रुचि के अनुकूल पड़ते हैं। फिर भी रसखान द्वारा निरूपित किया गया उपयुक्त प्रेम भाव एक पक्षीय नहीं है। कृष्ण भी गोपियों से वैसा ही प्रेम करते हैं। किसी प्रेयसी गोपी के प्रति उनकी समवादी भाव को प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने एक उदाहरण इस प्रकार दिया है, एरी आज काली सब लोग लाज त्यागी दो, सीखे है सबे विधि स्नेह सर साईबो, यह रसखान दीन द्वई में बात फैली जे है, कहा लो सयानी चंदा हाथन दुराईबो, आजु हो निहारयो वीर निपट कालिंदी तरु, दोन को दोन सौ मुरी मुस्काईबो, दो परे पेया दो लेते है बलेया, इन्हें भूली गई गैया उन्हें गागर उठाईबो। अर्थात आजकल उन दोनों उस गोपी एवं कृष्ण ने सभी लोकलाज का त्याग कर अपने पारस्परिक प्रेम को बढ़ाना ही निश्चित किया है। उन्हें यह विदित है कि दो चार दिनों में जब ये बात फैल जाने वाली है तो फिर चंद्रमा को हाथ से छिपाने के यत्न करना व्यर्थ है। अजी, मैंने आज ही उन दोनों को यमुना के ठीक किनारे एक दूसरे पर मुड़कर देखते और मुस्कुराते हुए पाया। दोनों एक दूसरे के पैरों पड़ते थे, एक दूसरे की बलिया लेते थे, इन्हें अपनी गोए भूल गई और उन्हें अपनी गागर उठाना भूल गया। रसखान के काव्य का प्रसाद गुण, उसकी भाषा का सौष्ठव तथा उनके द्वारा किया गया स्वाभाविक चित्रण वास्तव में प्रशंसनीय है।